ओम शांति। क्लास तो हम सब करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समाचार सुनाते हैं, क्योंकि अभी हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में हम लोगों का प्रोग्राम था ORC में। जैसे कि आपको पता है, दादी गुलजार भी ORC में है, ओम शांति रिट्रीट सेंटर। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है, ये तो पहली न्यूज है। जिस दिन हम गए, 4 घंटे लगे रहे रास्ते में, फिर ORC पहुंचे, तो वहां 2000 से भी ज्यादा दिल्ली के भाई बहन इकट्ठे हुए थे। वहां पर दिवाली का मेला रखा था, दादी गुलजार आई है, तो सभी आए, सभी टीचर्स, सभी भाई बहन। बहुत सुंदर प्रोग्राम था दादी की प्रेजेंस में दिल्ली ORC में। तो मेरे को जो अनुभव हुआ, मैंने तो 50 साल के बाद दिल्ली की दिवाली देखी है, तो इसलिए बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि कंप्लीट जैसे ब्यूटीफुल यज्ञ क्या होता है, बहुत सुंदर पुष्पक विमान था वहां पर है। फिर बोट नाव होती है ना, बोट गुणों की नाव, उस पर बैठो, फिर दिल्ली मेला सारा स्टॉल लगे हुए हैं, वहां जाओ और रिमझिम देखो, मतलब सब प्रकार के जो अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस आपको मिल सकते हैं वो मिले। और दादी गुलजार ने भी बहुत अच्छा मैसेज वहां दिया। तो दूसरे दिन हम लोग गए थे वहां पर श्री फोर्ट में भी हमारी मोहिनी बहन जी का 75 ईयर्स का मनाया गया था। बहुत सारे टीचर्स आए थे, 75 के करीब उनके साथ। बहुत सुंदर रॉयल दरबार जैसा लगा हुआ था, ऐसी फीलिंग सतयुग की आ रही थी। उसमें एक विशेष बात मोहिनी बहन ने बहुत अच्छी बताई, जो मुझे बहुत टच हुई, कि जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो बच्चे जो हैं, ये याद रखें हम किस लिए आए हैं इस यज्ञ में, किस लिए आए हैं इस राजयोग में, किस लिए आए हैं। बहुत सारे आंसर आएंगे आपके मन में है? उसने बहुत अच्छा बताया, मूर्ति बनने, मूर्ति, जैसे मंदिर में मूर्ति होती है, मूर्ति के आगे जाके सभी पूजा करते हैं। मूर्ति बोलती नहीं है, लेकिन सबको साक्षात्कार करा देती है। तो हम भी मूर्ति बन जाएं। तो मैंने इसलिए देखा कि जिन जिन सेंटरों पर मैं गई, सभी जगह वहां दिवाली मनाते हैं, तो विशेष मैंने इस बार पूजा देखी, पूजा कैसे करते हैं लक्ष्मी की। तो मैंने देखा कि लोगों की ना भावना बहुत जबरदस्त है उस दिन, दिवाली के दिन, वो जो 7 बजे का टाइम होता है ना, उस समय मैंने वाइब्रेशन फील किए, सभी घरों में पूजा हो रही है, सभी घरों में। और जो वाइब्रेशन नहीं, जैसे जब हम योग में बैठते हैं 7 बजे, तो बाबा के वाइब्रेशन एकदम कंप्लीट साइलेंस, और उसमें हमको कुछ ना कुछ प्राप्ति कराता तो बाबा है। तो मैंने देखा कि जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, वो पूजा करते हैं, और पूजा भी विधिवत करते हैं, क्योंकि सब जगह दिखाया जा रहा था 21 बार ये मंत्र गाओ, 4 दीपक यहाँ से जगाओ, 4 दीपक वहां जगाओ, उसके अर्थ बताते हैं। तो मैंने देखा कि ये जो भावना है लोगों में कि धन आएगा, वो तो सोचते हैं ऐसे ही आ जाएगा धन, 1 घंटा पूजा करते हैं तो वो भावना से करते हैं कि धन आएगा। लेकिन यदि गहराई से हम सोचें, विधिवत, मैंने ये देखा एक्यूरेसी, सफाई, सच्चाई, क्योंकि एक है चालू पूजा कर देना, एक है पूरा एकाग्रता से बैठ करके और एक्यूरेट, जैसे बाबा नहीं कहता कि अभी तुम एक्यूरेट बनोगे तुम्हारी पूजा भी एक्यूरेट होगी, कब उनको उठाना है देवियों को देवताओं को, कैसे स्नान कराना है, तो वो जो होता है ना दूध में लक्ष्मी की वो कॉइन्स को डालते हैं वो उसको नहलाते हैं, फिर वो लाल धागा होता है मेरे को नाम नहीं आता है मोली कहते हैं क्या कहते हैं वो रखते हैं, पतीसा रखते हैं पतासा रखते हैं, क्या क्या खाना पीना कहते हैं, आजकल जो भोग लगता है देवियों के लिए वो भी 1000 रुपया लग जाता है खाली भोग लगाने के लिए जो चीजें मिलती हैं। तो वो मैंने देखा कि ये जो लक्ष्मी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उसमें एक्यूरेसी बहुत चाहिए, चालू नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैं देख रही थी एक एक वो कर्म करते जाते थे, हम देखते थे उनको कि एकाग्रता कितनी है वो मैंने नोटिस किया। दूसरा एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट करते हैं पूजा, और तीसरा इतनी भावना देवियों के प्रति, कितनी भावना कि जैसे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे एक पूजा करने से, हैं इतनी भावना से करते हैं लोग पूजा। तो आप सोचो बाबा हमको कैसे देवी देवताएं बना रहे हैं, जब हम एक मिनट के लिए सोचते हैं कि भक्तों के अंदर इतनी रिस्पेक्ट और भावना और विधिवत और एक्यूरेसी, ये चार क्वालिटीज मैंने देखी, और इधर उधर नहीं देखते हैं, पूरी पूजा ढंग से करते हैं, ताकि मां लक्ष्मी खुश हो जाए। तो बाबा भी कहते हैं हम अपने जीवन में क्या करें, सारे दिन के जो हमारे ब्राह्मण जीवन के नियम हैं वो भी हम एक्यूरेट करें, क्योंकि यही पूजा कर रहे हैं ना वो कोई मूर्ति की नहीं है, उनके मन में है कि एक्यूरेट करना है, तो जिन्होंने ऐसा जीवन जिया होगा उसी क्वालिटी की वो पूजा कर रहे हैं ना, उस क्वालिटी को वो याद कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे यही रियलाइज हुआ कि हमने अपने ब्राह्मण जीवन में कितने नियम जो हैं सुबह से शाम तक हम एक्यूरेट करते हैं। जब हम बाबा को याद करते हैं तो कितनी भावना प्यार एकाग्रता से करते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी को ही पूजा कर रहे हैं उस क्वालिटी से। और तीसरा मैंने देखा कि ऐसे उनको लगता है गणेश की पूजा करेंगी सब विघ्न खत्म हो जाएंगे, है तो बहुत बड़ी बात कि विघ्न खत्म हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है हा? खाली एक पूजा से हो जाए। तो विघ्न हम आज भी मैंने क्लास कराया एक सेंटर पर दिल्ली में, मैंने कहा कि विघ्न आने से पहले पता चल जाए कि विघ्न आने वाला है। वो कैसे पता चले, क्योंकि 3 प्रकार के माइंड हैं, एक है विघ्न बनाने वाला मन, दूसरा है विघ्न को देखने वाला मन, दूसरा है विघ्न खत्म करने वाला। तो मेरा मन क्या काम कर रहा है, कोई भी बात हम सोचते हैं मन में तो इश्यू बना देते हैं उसका, छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, तो मेरा वो मन विघ्न बना रहा है। और दूसरा है विघ्न को विनाश करने वाला, बड़ी बात को भी छोटा बना देने वाला। इसलिए गणेश के साथ क्या दिखाते हैं, गणेश की इतनी बड़ी सूंड दिखाते हैं, मालूम है ना पेट क्यों दिखाते हैं, कान क्यों दिखाते हैं, सब कुछ वो मर्ज कर जाए, बड़ी बात को भी छोटा, अंदर ही समा जाओ जो भी बात है। तो इसलिए उसको विघ्न विनाशक कहते हैं। तो 3 शक्तियों की पूजा ना, कि समा लेना हर बात को, नहीं समा लेना, कोई भी बात हो रही है हम अपने अंदर संभाले, इसलिए इतना बड़ा पेट दिखा देते हैं, उनको क्या पता क्यों दिखाते हैं, लेकिन हम लोग तो समझ सकते हैं ना अपने ब्राह्मण जीवन में, कोई बड़ी बात को हम छोटा बना लेते हैं, संभाल लेते हैं, हैं? और त्रिकालदर्शी बनकर के सोचते हैं करते हैं, तो बड़ी बात भी छोटी हो जाती है, इसलिए विघ्न विनाशक की स्थिति। और दूसरा तीसरा है विघ्नों को देखने वाले, विघ्नों को देखते कैसे हैं, वो दूसरों को देखते हैं कि दूसरों की स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, उनको हम देख रहे हैं, वो मन में सोच रहे हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, विघ्न को देख रहे हैं हम, लेकिन हमारा काम है गणेश बनना, गणेश माना विघ्न विनाशक, अर्थात छोटी बड़ी बात को भी अंदर समा लेना, और उसकी आंखें कैसी होती है नी हाथी की हैं, और कान कितने बड़े हैं, तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं वो भी निकाल देता होगा हाथी। लेकिन मैंने एक बार देखा था हाथी की सूंड में कुछ वो पैसे रखते हैं, तो वो बहुत लॉयल है ना हाथी, तो ऊपर अपने मालिक को देता था, और किसी ने जानबूझ के फूल रख दिए उसने वो फेंक दिए, तो इसका मतलब उसको सेंस होगी ना है? कौन सी चीज स्वीकार करनी है और कौन सी नहीं करनी है, तो ये बुद्धि की बात आ गई नहीं। तो हमारी भी बुद्धि वो हो जो कौन सी बात मुझे लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो इसलिए विघ्न विनाशक की ये स्थिति मैंने देखा कि बहुत सुंदर पूजा करते हैं। और हमारा एक और प्रोग्राम था, वो था यूथ के साथ, यंग लोग जो 40 साल से नीचे वाली उम्र वाले हैं ना। कल भैया दूज का दिन था ना, तो सबको बुलाया था। तो ये जो यंग लोग हैं दिल्ली के, इन्होंने काफी प्रश्न उत्तर किए थे। पहला प्रश्न ये था कि हम अपनी जो अंदर योग्यता है वो कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जब हम राजयोग का ये नॉलेज लेते हैं ना, पहला एम ये रखना है कि हमारे अंदर जो भी योग्यता है, लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, कुछ भी अच्छी अच्छी गाने की, कोई भी कला है, कोई भी प्रकार की विशेषता है, उसको हम दबाएं नहीं, लेकिन उसको हम विकसित करें। तो क्योंकि देखो, बाबा के यज्ञ में भी जो आत्मा अपने को विकसित करती जाती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, है या नहीं? यदि हमने अपने को विकसित नहीं किया तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, है ना। और बहुत हमने देखा है कि जो पहले पहले एक भाई था, मुझे बताते थे, वो कहते थे कि जितना हमारे अंदर टैलेंट्स बढ़ता जाएगा, योग्यताएं बढ़ती जाएंगी, आने वाले समय में हमारी उसकी वैल्यू होगी। तो इसलिए हमारे अंदर जो भी योग्यता हो वो हम बढ़ाएं। तो कल हम लोगों की ये डिस्कशन चली थी यूथ प्रोग्राम में कि हम दबाएं नहीं और ये नहीं सोचें कि हमको चांस नहीं मिलता। मैंने कहा चांस बनाते जाएंगे, अपनी योग्यता को उभारते जाएंगे, तो ड्रामा में ऐसा समय आएगा आप रेडी हैं तो बाबा ड्रामा आपको चांस देगा। फिर हमारा मन सोचता है चांस मिले तो, ऐसा नहीं, हम तैयार होते जाएं। तो एक तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। दूसरा, मेरे को यूथ प्रोग्राम का अच्छा लगा कि इतना उनको उमंग उत्साह है। तो मैंने कहा देखो, ब्रह्मा बाबा भी जब तैयारी की ये यज्ञ चलाने के लिए, उन्होंने जो उनका विजन था ब्रह्मा बाबा का, वो भी यही था ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा 60 साल की उम्र, और जो आए थे बाबा के पास वो कितनी उम्र के थे दादियां, 13 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसा विजन रखा ना कि इन छोटों को आगे बढ़ाएं, योग्यता से भरें, ताकि यही आगे चल करके यज्ञ चलाएंगे। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा देखो, आप बाबा के इतने अच्छे यंग बच्चे हैं, तो अभी आप जिम्मेवारी लो, ये नहीं सोचो कि कोई और करेगा, लेकिन अभी हमको ब्रह्मा बाबा की लेगेसी को आगे बढ़ाना है ना। तो इसलिए इतनी योग्यताएं हम भरते जाएं, क्योंकि यंग लोग होते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट है, बहुत सारे आकर्षण है ना दुनिया में, कहीं यहां वहां नहीं फंसना है, लेकिन हम अपनी योग्यता को आगे बढ़ाएं। एक तो ये हमारा प्रोग्राम था कि अंदर ही अंदर हम दबे नहीं रहें, जो भी अच्छी अच्छी विशेषताएं हमारे अंदर हैं उसको हम एक्सप्रेस करें, यूज करें, ताकि हम आगे बढ़ें। फिर तीसरा हमने ये सोचा यूथ प्रोग्राम में ट्रेनिंग, जैसे आजकल ना विदेश के जो भाई बहन है ना, वो सोचते हैं जैसे ये हम क्लास करते हैं, एक ये तरीका है ना सीखने का। दूसरा है विदेश में वर्कशॉप करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करो, है ना, पार्टिसिपेट करो, भाग लो। अभी तीसरा एक मेथड उन्होंने रिसर्च किया कि अभी हमको यदि ब्राह्मण यज्ञ को आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, और खुलना है, और बढ़ना है, तो एक और तरीका अभी निकला है। वो तरीका है कि जैसे हम ना सेवा करते हैं या स्व की सेवा करते हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं, है ना, जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ भी क्लास कर रहे हैं, उसमें हर बात अपने ऊपर अप्लाई करो कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। चाहे हम भाषण भी कर रहे हैं उसमें भी देखते चलो कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन है। उसमें दूसरों को शेयर नहीं करना है लेकिन अपने को रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट समझते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना विचार सागर मंथन करो तो उसको रिफ्लेक्शन, तो बहुत बहुत गहराई में जाकर के अपने को जांच करनी है। रियल जांच हो, ऊपर ऊपर से नहीं, क्योंकि बाबा की मुरली हम सुनते हैं एक कान से फिर इधर निकल जाती है, एक दो पॉइंट याद रहती होंगी, लेकिन वो वाली जो ज्ञान है विजडम जो है वो हम अंदर जांच करें कि ये क्या चीज है और इसको मैंने अपने अंदर अप्लाई किया, यूज किया सारे दिन में। तो वो उन्होंने एक सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है जो वो ट्रेनिंग दे रहे हैं आजकल हम सबको, कि जो हम नॉलेज लेते हैं बाबा से, मुरली से हो या कोई भी क्लास से हो करते हैं ना, तो वो ज्ञान फिर हम अपने अंदर जांच करें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो बाबा का नॉलेज है, वो मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में कहाँ तक उतारा है और उसका मीनिंग क्या है मेरी लाइफ में। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। वो लोग प्रश्न देते हैं, उनके उत्तर देने पड़ते हैं, ऐसे फटाफट नहीं सोच सकते। तो उसमें एक घंटा बैठो, शांति में बैठो, फिर सोचो, है ना। बहुत अच्छा, मेरे को ये अच्छा अनुभव हुआ ओआरसी में, जब हमारी साइलेंट रिट्रीट थी ना, तो 10 प्रकार के ब्रह्मा बाबा के पिक्चर्स रखे थे। तो आज मैं अपनी डायरी प्लेन में से आई हूँ ना, प्लेन में मैं खोल के पढ़ रही थी, तो ब्रह्मा बाबा को जब हम देखते हैं अलग अलग, तो बाबा के साथ मेरा क्या संबंध है वो संबंध ढूंढो, फिर उससे मेरे को क्या प्राप्ति हो रही है वो लिखो। तो मैंने आज पढ़ा, जो बाबा वो पत्र लिख रहे हैं ना, तो उस समय मैंने ये लिखा कि बाबा हमारे दिलों का हाल सुनते हैं योग में और फिर हमको पत्र लिखते हैं, तो कौन सा संबंध हो गया है? सच्चे दिल का बाबा के साथ दिलवर का संबंध, वो वाला जो है ना बाबा पत्र लिख रहा है। खाली ऐसे थोड़ी पत्र लिख रहा है, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है ना बाबा, कि दिलों का हाल सुन के उन आत्माओं के अंदर जो दुख है, दर्द है, जो भी प्रकार की दबाव है ना बाबा, वो सुन करके उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, या उनके प्रति जो भी बाबा उन्नति करवाना चाहते हैं वो कुछ लिख रहे हैं बाबा। तो मैंने देखा कि बाबा के साथ हमारा इतना नजदीक का संबंध है पत्र लिखने का। वो खाली एक के लिए थोड़ी लिखते थे बाबा, उस समय तो सारी दुनिया बाबा के सामने है ना। तो बाबा हमारे दिलों का हाल सुनते हैं और उसके रिटर्न में बहुत सुंदर दिल को भी भरपूर कर देते हैं। फिर दूसरी एक पिक्चर मैंने देखा क्या लिखा हुआ था, वो था बाबा सीधा खड़े हैं तो उसके साथ हमारा क्या संबंध है। तो आप सोचना कल या आज, लेकिन मैंने ये देखा न्यारा और प्यारा, एकदम न्यारा बाबा हो जाता है और प्यारा। तो न्यारा प्यारा माना अटैचमेंट नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है बाबा के साथ, है अटैचमेंट, एकदम वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन आएगा, है पवित्र वाइब्रेशन। तो बाबा न्यारा भी है और प्यारा भी है, सब कुछ करते हुए भी बाबा नहीं कर रहा है और सब कुछ कर भी रहा है, करण करावन हार है। तो ये एक एक पिक्चर जो है ब्रह्मा बाबा की, वो हम लोग सामने बैठते थे ना उस पर हम विचार करते थे, बहुत सुंदर सुंदर विचार आते हैं। तो आप कल देखना यदि कहां भी बाबा की पिक्चर हो अलग अलग, तो आप उसके सामने बैठ करके कहना बाबा ये वाला जो चित्र है आपका मेरे साथ इसका क्या संबंध है। तो वो क्वालिटी ढूंढनी है आपको, जैसे मैंने न्यारा प्यारा ढूंढ लिया, ये बाबा हमारे दिल का हाल सुनकर दिलवर बाबा है, ऐसे थोड़ा गहराई में जाकर के उस बाबा की पिक्चर के साथ क्या क्वालिटी संबंध मेरे जीवन के लिए है वो ढूंढना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कल भी यूथ का सारा प्रोग्राम किया और आज हमारा एक और प्रोग्राम था, वो था एक और सेंटर पर हरिनगर में, और परसों था एक और जगह पर मजलिस पार्क में, रोज एक दिन कोई ना कोई सेंटर पर, क्योंकि ये त्योहारों के दिन है ना, तो 200-200 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 500 ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं, रिमझिम लगी हुई है सभी जगह, है ना। दिवाली के दिन है, भैया दूज के दिन है, सब जगह खुशियां मनाते हैं ना लोग, न्यू ईयर है। तो मैंने देखा सभी ब्राह्मणों की चहल पहल और सभी ब्राह्मणों से मिलन मिलाना और सभी बाबा की याद में बैठते हैं और वो खुशी में आते हैं, ये मैंने सारा अनुभव किया। ये पहली बार हमने वहां जाकर के दिवाली मनाई थी। मैंने कहा अच्छा है ये भी तरीका कि भाई बहनों को हम कभी देखे नहीं, सेंटर कभी देखते नहीं है ना, इतने बड़े बड़े सेंटर हैं अभी तो, बहुत बड़े बड़े सेंटर हैं, बाबा का कार्य कहाँ पहुंच गया है। छोटे छोटे थे, एक एक घर था, दो दो कमरे थे, अभी जा कर करके कितना बाबा ने दे दिया है, ये भी एक उन्नति की निशानी है नहीं, कहाँ बाबा ने पहुंचा दिया है। योग के कमरे भी बहुत सुंदर हैं, वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे हैं, तो परमात्मा पालना तो कर रहा है और खाना पीना भी दे रहा है, बहुत बढ़िया सब जगह इतना बढ़िया बाबा खाना भी देता है, नहीं पालना ही देखो ना, बाबा की पालना है तो जबरदस्त। सुबह उठ के अमृत वेले दिमाग ठीक कर देता है, सोचो अच्छा, फिर बाबा खाना पीना भी बढ़िया दे देते हैं, फिर स्टडी भी करा देता है बाबा। तो मैं सोच रही थी कि कितना बाबा सूक्ष्म है, कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं है, अपना काम किए जा रहा है बाबा, कितनी आत्माओं का जीवन बना रहे हैं बाबा। तो ये मेरे दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकला। ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।
मत रहा।